सफ़ा नंबर 24। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे बचपन में गाहे बगाहे बिलखसूस सर्दियों में मियाँ जी के पास एक साहब कश्मीर से आया करते थे, जिनके मतलब कहा जाता है कि हमारे पीरों के ख़ानदान से हैं। इनके आने पर बेजी वालदा इकबाल बहुत जज्बज़ हुआ करती थी। फ़ौक मज़ीद तहरीर करते हैं कि इन शेख अकबर की चौथी पुश्त में चार भाई थे। वो इन अयाम में जब कश्मीर अफगानिस्तान के मुतहद था, तरके वतन करके पंजाब आए, और ऐसा मालूम होता है कि इनका वतन चौंके तहसील कोलगाम के इलाके में था, इसलिए वो बानिहाल को तय करते हुए जम्मू के रास्ते सियालकोट आए और यहीं आकर मुकीम हो गए। फरजंदे अव्वल शेख मोहम्मद रमज़ान और शेख मोहम्मद रफीक फरजंदे दोम ने सियालकोट को ही मुस्तकिल वतन करार दे दिया। शेख अब्दुल्ला जिला सियालकोट में मौजा जेठ यक्के में सकूनत पजीर हो गए। चौथे भाई ने, जो सबसे छोटे थे और जिनका नाम मालूम नहीं हो सका, लाहौर में सकूनत अख्तियार की। शेख मोहम्मद रमज़ान सूफी मनश बुजुर्ग थे। उन्होंने तसव्वुफ पर फारसी जुबान में चंद एक किताबें भी लिखी हैं। शेख मोहम्मद रफीक ने सियालकोट में बाजारी की दुकान खोल ली। इनके फरजंद शेख नूर मोहम्मद वालद इकबाल भी वालद की दुकान पर काम करते रहे। अलबत्ता शेख मोहम्मद रफीक के छोटे फरजंद शेख गुलाम मोहम्मद महकमा नहर में मुलाजम हो गए और रोपड़ में थे कि शेख मोहम्मद रफीक, जो अपने फरजंद की मुलाकात के लिए आए हुए थे, यहीं बीमार हुए और यहीं इंतकाल कर गए। आपकी आखिरी आरामगाह भी रोपड़ ही में है। तीसरे फरजंद शेख अब्दुल्ला की औलाद का कसीर हिस्सा रियासत हैदराबाद दक्कन में रहता है, और वहीं इनकी बुदोबाश है और ज़रात इनका पेशा है। चौथे भाई जो लाहौर में थे, वो लावालद ही इंतकाल कर गए। शेख मोहम्मद रफीक के वालद का नाम सियालकोट में ना किसी उम्र रसीदा आदमी को मालूम है और ना ही इनकी औलाद और दूसरे कराबतदारों को। इसकी वजह यह है कि इनके वालद पंजाब नहीं आए थे, बल्कि ये खुद ही अपने भाइयों के हमरा आए थे, इसलिए किसी को उनके वालद का नाम मालूम नहीं हो सका। शेख मोहम्मद रफीक के मुतल्लिक मौलाना अब्दुल अजीज मलक गुजरांवाला उम्र 94 साल का बयान है कि वो दरमियाने कद के बुजुर्ग थे और नहायत वजी और खूबसूरत थे, और खदोखाल लबो लहजा और दरख्शां चेहरे से इनकी कश्मीरियत टपकती थी। फौक की इस तफसील में कुछ खामियां रह गई हैं। शेख मोहम्मद रफीक और इनके भाइयों के वालद का नाम शेख जमालुद्दीन था, चूँकि शेख इजाज़ अहमद के बयान के मुताबिक बाज़ रजिस्ट्री शुदा मसवदात में इनकी वल्दियत यूं ही दर्ज है। इसी तरह शेख मोहम्मद रफीक के इन नामालूम भाई का नाम शेख अब्दुल रहमान था। यह दुरुस्त नहीं कि उन्होंने लाहौर में सकूनत अख्तियार की और लावालद फौत हुए। शेख अब्दुल रहमान की रहाइश भी सियालकोट में ही थी और इनकी औलाद आज तक वहीं आबाद है। इसी तरह शेख अब्दुल्ला की औलाद भी सियालकोट में आबाद है। गो ये सही है कि इनके ख़ानदान में से बहुत अफराद हैदराबाद दक्कन चले गए थे। फौक लिखते हैं कि शेख मोहम्मद रमज़ान इकबाल के दादा के भाई ने फारसी ज़बान तसव्वुफ पर चंद एक किताबें भी लिखीं, लेकिन इन कुतब की इन्होंने कोई तफसील नहीं दी, ना ये बताया कि इनकी इस इतला का ज़रिया क्या था। रोज़गार फ़कर जिल्द दो में शेख इजाज़ अहमद के हवाले से तहरीर है। इलामा इकबाल के अजदाद में किसने और कब कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में सुकूनत अख्तियार की, इस बारे में पूरे वसूख के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती। कायरीन ये हैं कि 18वीं सदी के आखिर में या 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में ये हिजरत हुई होगी। सफ़ा नंबर 27। और हिजरत करने वाले बुजुर्ग या तो अल्लामा इकबाल के दादा के बाप शेख जमालुद्दीन थे, या इनके चार बेटे जिनका नाम शेख अब्दुल रहमान, शेख मोहम्मद रमज़ान, शेख मोहम्मद रफीक और शेख अब्दुल्ला थे। इसका भी अमकान है कि शेख जमालुद्दीन ने अपने चारों बेटों को साथ लेकर तरके वतन किया हो। बहरहाल ये तो साबित है कि 19वीं सदी के आगाज़ में जो चारों भाई सियालकोट में सकूनत पजीर थे, इनमें इलामा इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक और इनके दो भाई शेख अब्दुल रहमान और शेख मोहम्मद रमज़ान तो सियालकोट में रहते थे, और तीसरे भाई शेख अब्दुल्ला मौजा जेठ यक्के में। इन चारों भाइयों की औलाद आज तक शहर सियालकोट और मौजा जेठ यक्के में आबाद है। इलामा के दादा की पहली शादी शहर सियालकोट के एक कश्मीरी ख़ानदान में हुई। इसकी बीवी से कोई औलाद ना हुई और वो वफात पा गई। दूसरी शादी जलालपुर जट्टा के एक कश्मीरी घराने में हुई। ये बीवी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इसका लकब कजरी पड़ गया। इससे शेख मोहम्मद रफीक के ऊपर तले 10 लड़के हुए और सब के सब फौत हो गए। अलामा के वालद शेख नूर मोहम्मद शेख मोहम्मद रफीक की 11वीं औलाद थे। इनकी पैदाइश पर घर की औरतों ने बड़ी मन्नतें मानी। پیروں فقیروں سے دعائیں بھی کرائیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی نیک دل بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور علامہ کے والد نہ صرف زندہ رہے بلکہ طویل عمر پائی۔ قمری حساب سے ان کی عمر 92 سال اور شمسی حساب سے 93 سال کی ہوئی۔ انہوں نے اپنے قابل فخر بیٹے اقبال کی شہرت، عزت اور مقبولیت کی بھاریں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ علامہ کے والد کی پیدائش کے بعد ان کے والدین کے یہاں ایک اور لڑکا بھی ہوا، ان کا نام غلام محمد تھا۔ وہ محکمہ نہر میں اوورسیز تھے اور روپڑ ضلع امبالہ میں متعین تھے۔ شیخ محمد رفیق اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے روپڑ گئے ہوئے تھے کہ وہیں حیضہ ہوا اور اسی مرض میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ روپڑ ہی میں وہ دفن ہوئے۔ شیخ غلام محمد نرینہ اولاد سے محروم تھے۔ وفات کے وقت ان کی دو لڑکیاں حیات تھیں جن کی اولاد شہر سیالکوٹ میں آج تک آباد ہے۔ شیخ نور محمد والد اقبال کو موت سے بچانے کی خاطر اس زمانے کے ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست معاشرہ کی رسم کے مطابق ان کے والدین نے ان کا ناک چھید کر نعت پہنائی تاکہ نظر بد یا قدرت کی منفی قوتوں کو دھوکہ دیا جا سکے کہ بچہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ اسی سبب بعد میں ان کا لقب نتھو پڑ گیا۔ شیخ نور محمد کی وفات 1930 میں ہوئی۔ اگر شمسی حساب سے انہوں نے 93 سال عمر پائی تو سن ولادت 1837 ہوگا، اور اس کی تصدیق بھی اس بات سے ہوتی ہے کہ شیخ نور محمد کہا کرتے تھے کہ 1857 کے ہنگامے میں وہ جوان تھے، یعنی ان کی عمر تب 20 برس تھی۔ انسان کے لیے ترک وطن کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کے بزرگوں نے کشمیر سے ہجرت کیوں کی؟ اس کا کوئی واضح جواب ہمارے پاس موجود نہیں۔ بقول فوق، جب اقبال کے بزرگ کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے تو کشمیر افغانوں کے متحد تھا۔ اگر یہ ہجرت 18ویں صدی کے آخری یا 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہوئی تو اس وقت کشمیر میں افغانوں کا زوال شروع تھا اور سکھ اس پر قابض ہو رہے تھے۔ فوق لکھتے ہیں کہ کشمیر سے ہجرت کرتے وقت بزرگان اقبال کی سکونت تحصیل کولگام کے علاقہ میں تھی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ فوق نے یہ اطلاع کہاں سے حاصل کی، البتہ ان کا یہ قیاس درست ہو سکتا ہے کہ وہ بانحال سے گزر کر جموں کے رستے سیالکوٹ آئے۔ صفحہ نمبر 29۔ احمد شاہ عبدالی 1752 میں کشمیر پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر کے دورانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کشمیر پر کابل سے حکومت صوبہ داروں کے ذریعے ہونے لگی۔ 9 سال بعد یعنی 1761 میں احمد شاہ عبدالی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی اور وہ 1772 میں فوت ہو گیا۔ 1798 میں اس کے ایک جانشین زمان شاہ نے رنجیت سنگھ کو لاہور کا حاکم مقرر کیا، جو بعد ازاں پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں افغان برتری کا قلعہ کما کر کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حیثیت سے اس سارے علاقے کا آزاد و خود مختار حاکم بن گیا۔ صوفی کے مطابق افغانوں کے کشمیر پر تسلط کی مدت کل 67 برس ہے، 1752 تا 1819۔ اس دوران میں اس پر 14 افغان صوبے داروں نے حکومت کی۔ صوفی تاریخ کشمیر کے اس دور کو افراتفری کے دور کا نام دیتے ہیں کیونکہ افغانوں کے متحد کشمیریوں کی حالت ابتر ہو گئی۔ افغان صوبے داروں کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ کسی طرح کابل سے آزاد ہو جائیں۔ دوسری طرف کابل کے مختلف دعوے داروں کی آپس میں خانہ جنگی، خرچ بھی کشمیر کو اٹھانا پڑتا تھا۔ مثال کے طور پر 1757 میں صوبے دار عبداللہ خان کشمیر سے 1 کروڑ روپیہ لے کر کابل گیا۔ چند سال بعد کشمیر میں ایسا قحط پھوٹا کہ کشمیر تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1772 میں صوبے دار کریم داد خان کے عہد حکومت میں 3 ماہ کے عرصہ میں کشمیر میں وقتاً فوقتاً شدید زلزلے آتے رہے جن سے ہزاروں افراد متاثر ہوئے۔ 1783 میں صوبے دار آزاد خان کے دور حکومت میں افغانوں کی آپس کی خانہ جنگی کے علاوہ کشمیر میں ایک بار پھر سخت قحط پڑا اور نمک کی قیمت 4 روپے سیر تک پہنچ گئی۔ سیف الدولہ مدد خان اور میر داد خان کے عہد حکومت میں جو 1788 میں ختم ہوا، کشمیریوں پر اتنے ٹیکس عائد تھے کہ کوئی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا سکتا تھا۔ 1779 میں جمعہ خان کے دور حکومت میں شدید برف باری کے سبب سیلاب نے کشمیر میں بڑی تباہی مچائی۔ 1793 سے لے کر 1800 تک کشمیر میں افغانوں کی آپس میں خانہ جنگی کے باعث ہزاروں جانیں تلف ہوئیں۔ بالآخر صوبے دار عبداللہ خان گرفتار ہوا اور اسے با پایا جولا کابل لے جایا گیا۔ 1801 में काबुल के बादशाह जमान शाह को पकड़कर अंधा कर दिया गया और इसका भाई महमूद शाह अफगानिस्तान का बादशाह बना। इसी दौरान अब्दुल्ला खान काबुल से फरार होकर कश्मीर आ पहुंचा और काबुल से आज़ादी का ऐलान कर दिया। काबुल में महमूद शाह को मजबूर करके शुजाल मुल्क को बादशाह बना दिया गया। 1802 में इसने शेर मोहम्मद खान को कश्मीर की तस्खीर के लिए रवाना किया, लेकिन अब्दुल्ला खान 1807 में फौत हो गया। 1809 में काबुल फिर अफगानों की अंदरूनी मुल्क खाना जंगी का शिकार हुआ। शुजाल मुल्क को अजीम खान ने शिकस्त दी और इसने महाराजा रणजीत सिंह की पनाह ली। शेर मोहम्मद खान कश्मीर से काबुल पहुंचा और वहां कत्ल कर दिया गया। इसके बाद अता मोहम्मद खान कश्मीर का सूबेदार बना और 1810 में इसने काबुल से आज़ादी का ऐलान किया। 1813 में अता मोहम्मद खान ने महाराजा रणजीत सिंह और फतेह खान की फौजों से शिकस्त खाई और महाराजा रणजीत सिंह को चकमा देकर फतेह मोहम्मद कश्मीर पर काबज हो गया। 1814 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन फतेह खान के जानशीन अजीम खान के हाथों शिकस्त खाकर पिसपा हुआ। महाराजा रणजीत सिंह सियालकोट के रास्ते कश्मीर पर हमला आवर हुआ था, बल्कि इसने कुछ रोज सियालकोट में ठहरने के बाद दर्रा पीर पंजाल के रास्ते पंजाब कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की। इस साल भी कश्मीर में एक महीब कहत पड़ा और हजारों जाने इसकी भेंट चढ़ी। अजीम खान को काबुल वापस बुलवा लिया गया। 1818 में इसका भाई जब्बार खान सूबेदार बना। यह कश्मीर का आखिरी अफगान हाकम था। 1819 में इसने महाराजा रणजीत सिंह की फौजों से शिकस्त खाई और काबुल भाग गया। यूं 1819 में कश्मीर सिखों के कब्जे में आ गया। सफा नंबर 30। कश्मीर पर सिखों की हुकूमत 27 बरस 1819 से 1864 तक कायम रही और इस दौरान इसके 10 सूबेदार यहाँ मनमानी करते रहे। सूफी के नज़दीक सिखों का अहद हुकूमत कश्मीर की तारीख का तारीख तरीन दौर था। वो विलियम मोर क्राफ्ट के हवाले से, जो 1824 में कश्मीर गया, तहरीर करते हैं कि सिख कश्मीरियों को जानवरों की तरह समझते थे। इनके दौर हुकूमत में अगर कोई सिख किसी कश्मीरी को कत्ल कर देता तो इसे कानूनन 16 रुपए से 20 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ता और इस रकम से 4 रुपए मकतूल के खानदान को मिलते अगर वो हिंदू होता और 2 रुपए अगर वो मुसलमान होता। कश्मीरियों पर टैक्सों का इतना बोझ था कि कस्बों के गर्दोनवाह फकीरों से अटे पड़े थे और हजारों लोग नहायत कसपरी की आलम में पंजाब या हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। बैरन शुमबर्ग, जो चंद साल बाद कश्मीर गया, ने अपनी तहरीरों में सिखों के मतहत कश्मीरियों की नहायत दर्दनाक तस्वीर खींची है। इनकी हुकूमत में गाहे कि ज़बिया की सज़ा मौत थी। अगर कोई मुसलमान गाय ज़बह करते पकड़ा जाता तो इसे श्रीनगर की गलियों में घसीटा जाता और फिर फांसी पर लटका दिया जाता या जिंदा जला दिया जाता। 1831 में कन्वर शेर सिंह के अहद हुकूमत में कश्मीर में ऐसा कहत पड़ा कि इसकी आबादी 8 लाख से 2 लाख रह गई। इस साल वैक्ट्रिया याकमो कश्मीर में था। वो कश्मीर से लिखे गए अपने खतूत में एक जगह लिखता है कि कोटली में मेरे कैंप के नज़दीक दरख्तों पर दर्जनों शख्स फांसी पर लटकाए गए थे। जब भीम सिंह और अर्दली मुझे मिलने आया तो बड़ी बेपरवाही से कहने लगे कि अपने दौर हुकूमत के पहले साल इसने 200 कश्मीरियों को फांसी पर चढ़ाया था, लेकिन अब इन पर हाकमों को खौफदारी रखने के लिए एक आध दर्जन को फांसी देना काफ़ी है। याकमो लिखता है कि अगर मेरे अख्तियार में होता तो भीम सिंह और इसके 300 सिपाहियों को, जो किसी लिहाज से भी डाकुओं से कम नहीं, हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर किसी मजबूत सड़क की तमीर पर लगा देता। इसके नज़दीक कश्मीर एक सहरा की तरह गैर आबाद था। 1832 में करपा राम के अहद हुकूमत में कश्मीर को एक बार फिर जलजलों ने झंझोड़ा। डॉक्टर जोसेफ वोल्फ का बयान है कि इसने 21 अक्टूबर 1832 को कश्मीर को खैराबाद का रास्ता में हजारों की तादाद में लोग सिखों की बर्बरियत से बचने की खातिर कश्मीर से फरार हो रहे थे। नीम भरना औरतें अपने बच्चे सरों पर उठाए भागी चली जा रही थीं। वैन 1835 में कश्मीर गया। इसने देहात को खाली पाया क्योंकि इनके मकीन हिजरत करके पंजाब, यूपी और दीगर इलाकों में पनाह गजीन हो चुके थे। 1836 में सिखों की शिकस्त के बाद जब पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो उन्होंने कश्मीर को 50 लाख रुपए के इवज महाराजा गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। यूं कश्मीर डोगरा खानदान की जागीर बन गया। इंसान अमूमन असूदा जिंदगी की तलाश में या खराबी हालात के सबब तरके वतन करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जद्दे आला पंडित राज कोल, जो फारसी और संस्कृत के आलम थे। मुगलों के आखिरी दौर में बादशाह फरख सीर के जमाने में तकरीबन 1716 में दिल्ली आकर आबाद हुए। फरख सीर बादशाह जब कश्मीर गया तो पंडित राज कोल की शख्सियत से मुतासर हुआ और इन्हीं खानदान समेत दिल्ली ले आया। बाद में ये खानदान अलाहाबाद मुंतकिल हो गया। इकबाल के हम गोत और दोस्त सरतेज बहादुर सैपरो जो फारसी के आलम थे के बुजुर्ग, इनके अपने बयान के मुताबिक इनकी पैदाइश से 130 साल पहले कश्मीर से हिजरत करके हिंदुस्तान में आबाद हुए। ख्वाजा नाजमुद्दीन के बुजुर्ग 1822 में अपनी तरफ से सिख बर्बरीजत का शिकायत मुगल बादशाह को करने दिल्ली गए थे। जब वहां पहुंचकर इन्हें बादशाह की बेबसी का एहसास हुआ या ये मालूम हुआ कि बादशाह इस सिलसिले में कोई कदम उठाने से कासर है, तो वो बंगाल जा आबाद हुए और ढाका के नवाबों के खानदान की बुनियाद रखी। कश्मीर पर अफगानों और सिखों के तसल्लुत की मुख्तसर रुदाद बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आई है ताकि वाजे किया जा सके कि 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में जब इकबाल के बुजुर्गों ने कश्मीर से हिजरत की तो वहां के हालात क्या थे। जाहिर है तारीख कश्मीर के मुतज़क्रा दौर में कहत, सैलाब, जलजले, अफगानों की अंदरूनी मुल्क खाना जंगी, टैक्सों का बोझ, गुर्बत व अफलास, सिखों की सफाकी खूनरेजी और जो जोरो सितम को बड़ा दखल है। इस जमाने में बेशुमार कश्मीरी खानदान तरके वतन करके बरसगीर के मुख्तलिफ शहरों में पनाह गजीन हुए। इसलिए कयास किया जा सकता है कि इकबाल के बुजुर्ग भी इन्हीं हालात के पेश नज़र अदम तहफ़ के आलम में अफगानों के आखिरी दौर में वतन से हिजरत करके और सियालकोट पहुँच कर इन्होंने तजारत को अपना पेशा बनाया। इकबाल के सिलसिला अजदाद के तस्करे से तो यही जाहिर है कि इनका तल्लक एक ऐसे खानदान से था जो फितरी तौर पर दीनी या मादी आसूदगी से कहीं ज्यादा इखलाकी और रूहानी मसरतों की जस्तजू में था और जो दुनिया के मुकाबले में हमेशा दीन को तरजीह देता था। गलबन इसी बिना पर इकबाल जरबे कलीम में अपनी नज़म जवेद से खताब में अरशाद करते हैं, गारत कर देंगे ये जमाना है इसकी नहाद काफराना, दरबार शहनशी से खुशतर मर्दान खुदा का आस्ताना, खाली हुआ इनसे दबस्ता थी जिनकी निगाह ताजीना, जिस घर का मगर चिराग है तू है इसका मजाक आरफाना। इकबाल ने खुसूसन अपनी जवानी में बहुत से ऐसे अशार कहे हैं जो इनकी कश्मीर के साथ वाबस्तगी जाहिर करते हैं। इसी तरह बावजूद इसके कि इकबाल के यहाँ मदूद किस्म की वतनियत या कौमियत की गुंजाइश नहीं, क्योंकि इनका अंदाज़ फिक्र आलमी है। इनके दिल में कश्मीर और अपने तबाह हाल हम वतनों के लिए जो दर्द कर्ब था, इसका अक्स इनके बाद अशार में देखा जा सकता है। इसी तरह अपने ब्रह्म नसब की तरफ भी इकबाल ने चंद अशार में इशारे किए हैं। हिंदुओं को बल अमूम और ब्राह्मणों को बिलखसूस अपने असलाफ के ब्राह्मण होने पर बड़ा फख्र रहा है। गलबन इसी सबब पंडित रामचंद्र दहलवी फाजल अरबी व संस्कृत ने इकबाल पर अपने मजमून में तहरीर किया है। अशोरी ज्ञान और कलाम रबानी को ब्राह्मण ज्यादा ही समझ सकता है। इसमें इकबाल ने क्या राज पना रखा है, यही वो कश्मीरी पंडित थे। हजारों वर्ष तक इनके आबाओ अजदाद ने रूहानियत की तरबियत में इकबाल को अपने अंदर परवरिश किया। ब्राह्मणी क्यादत ने हिंदुस्तान को सियासी आज़ादी दिलाई, मगर अजीब इतफाक है कि बरसगीर में मुस्लिम कौमियत के असूल और अलग मुस्लिम रियासत यानी पाकिस्तान के क्याम का तसव्वुर भी एक ब्राह्मण जादे ने दिया। सवाल पैदा होता है कि क्या इकबाल को अपने असलाफ के ब्राह्मण होने पर फख्र था, या जो कुछ अपने असलाफ से इन्हीं वर्षा में मिला इसमें ब्राह्मणियत का कितना हिस्सा था। इंसान की निजी जिंदगी में मुतलका अकायद की कोई अहमियत नहीं रहती, बल्कि इनका असर तो एक आध नस्ल तक मुकम्मल तौर पर जायल हो जाता है। सफा नंबर 35। इकबाल के जद आला ने इनकी पैदाइश से तकरीबन 450 साल कबल इस्लाम कबूल किया, इसलिए इकबाल को अपने असलाफ के ब्राह्मण होने पर क्या फख्र हो सकता है। मगर यह हकीकत है कि इकबाल गाय का गोश्त ना खा सकते थे, इसलिए गाय का गोश्त घर में ना पकता था। अगर इन्हीं गलती से कोई गाय का गोश्त खिला देता तो इनका मैदा कबूल ना करता और इनकी तबीयत मकदर हो जाती। अलावा इसके गो वो इल्मे नजूम के कायल ना थे, इन्होंने राकम की पैदाइश पर दो जन्म पत्रियां बनवाई जो महफूज रखी गईं। एक जन्म पत्री लाहौर में राजा नरेंद्र नाथ ने तरतीब दी और दूसरी मैसूर से पंडित श्री नवासिया ने बनाकर भेजी। बहरहाल इनके अशार में जिनमें ब्राह्मण नस्बी की तरफ इशारे हैं, तंज का पहलू नुमाया है, यानी ये कि सियासत के मैदान में मुसलमान एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लेकिन कुदरत की सतम ज़रीफ़ी है कि अगर यहाँ कोई हकीकी मानों में इस्लाम के असरार और रमूज या इसके रोशन मुस्तकबिल से आगाह है तो ब्राह्मण ज़्यादा है। इकबाल के बाद अशार से ये तासर भी मिलता है कि इनके नज़दीक फ़लसफ़े ऐसे अलूम पर इनके अबूर का सबब इनकी ब्राह्मण नस्बी थी, मगर इकबाल ने खुद ही फलसफे को अपनी रहबरी के लिए नाकाफी पाकर मुस्तरद कर दिया। इनके तजर्बे में तो इश्क रसूल ही ऐसी नेमत है जिसके जरिए वो अपने तमाम फिक्री मसाइल हल कर सके। इसलिए कुरानी तलीमात से इनका शगफ, इस्लाम के साथ इनकी मोहब्बत और मुसलमान होने पर इनका फख्र वो फितरी अनासर थे जिन्होंने इनकी शख्सियत की तशकील की। सफा नंबर 36, माखज बाब 1। तहरीर के अक्स के लिए देखिए रोजगार फकीर जिल्द दोम इज फकीर सैयद वहीदो दीन सफा 120। नंबर 2, अनवार इकबाल मरतबा बशीर अहमद डार सफात 51 ता 75। सर अब्दुल कादर ने भी इकबाल के हालात से मुतल्लक अपने मजमून में जो खुदांग नजर लखनऊ मई 1902 में शाया हुआ तहरीर किया है कि गोत इनकी सैफरो है। नंबर 3, तारीख अकवाम कश्मीर जिल्द अव्वल सफा 43-44। खत के पूरे मतन के लिए देखिए अनवार इकबाल सफात 75-77। नंबर 4, तारीख अकवाम कश्मीर जिल्द दोम सफा 44। सपरों के किसी मुस्लिम खानदान की तलाश इकबाल के ब्रादर जादे शेख इजाज अहमद की शादी के सिलसिला में की गई थी, लेकिन बकौल इकबाल नाकामी हुई। 5, असल खत शेख इजाज अहमद के पास महफूज है, अक्स के लिए मुलहजा हो। सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल अशाद दिसंबर 1973 सफात 4 और 5 के दरमियान रजिस्ट्रार दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर सूफी गुलाम मुहियुद्दीन थे। नंबर 6, तारीख अकवाम कश्मीर तबात 1943 सफात 320-323। नंबर 7, तहाइफुल इब्रार फिर जिक्र औलिया अल अग्यार सफात 123-124। नंबर 8, रोजगार फकीर जिल दोम सफात 113-114। नंबर 9, जहीफा इकबाल नंबर अक्टूबर 1973 हिस्सा अव्वल सफा 9 मजमून इकबाल के अजदाद का सिलसिला आलिया इज डॉक्टर मोहम्मद बाकर। नंबर 10, अदबी दुनिया मई 1965 सफा नंबर 9 मजमून इकबाल से मेरे तल्लुकात अज ख्वाजा हसन निजामी। 11, मशाहिर कश्मीर तबात 1930 नंबर 12, तारीख बुर्दशाही तबात 1944 सफात 400-401। नंबर 13, ऐजन सफात नंबर 294 295 298 299 306 309 357। फोक ने पंडित बैर बरका हेचरो की तसनीफ मजमू अल तारीख कश्मीर पर इन्हसार किया है। 14, तारीख अकवाम कश्मीर तबात 1934 सफात 352-356। नीज देखिए कश्मीर इज डॉक्टर जी एम डी सूफी अंग्रेजी जिल्द अव्वल सफात 28-102। चरार शरीफ श्रीनगर से तकरीबन 20 मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा है। शेख नूरुद्दीन वली रशी के मुकद्दद हिंदू भी हैं जो इन्हें नंदा रशी या शाहजा नंदा के नामों से याद करते हैं। 15, सहीफा इकबाल नंबर अक्टूबर 1973 जिल्द अव्वल सफात 11-12 इकबाल के अजदाद का सिलसिला आलिया इज डॉक्टर मोहम्मद बाकर। 16, सफहात 320-323। 17, इकबाल के हजूर जिल्द अव्वल सफात 169-170। 18, खत बनाम राकम 19। तारीख अकवाम कश्मीर तबात 1943 सफात 320-323। नंबर 20, फकीर सैयद वहीदुद्दीन सफात 115-116। 21, देखिए नकूश आप 31 नंबर जून 1946 सफा 2 इकबाल का बयान है कि इनके अबाव अजदाद ब्राह्मण थे, इन्होंने अपनी उम्रें इसी सोच में गुजार दी कि खुदा क्या है और इस اور میں اس سوچ میں گزار رہا ہوں کہ انسان کیا ہے، اور یہ کہ کشمیر میں ان کے خاندان کی رہائش موزہ چکو پرگنہ اودون ہے۔ تحصیل کولگام میں تھی۔ موزہ چکو پرگنہ اودون کا ذکر تو بابا لول حج کے وطن کے سلسلہ میں آیا ہے، اور بابا لول حج کا تعین 15ویں صدی میں کیا گیا۔ کیا بابا لول حج کی کئی اولادیں کئی صدیوں تک یہیں آباد رہیں اور اقبال کے آباؤ اجداد تحصیل کولگام سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے؟ ایسا ممکن تو ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ فوق کی اس اطلاع کا ذریعہ اقبال کے والد یا اقبال خود ہوں۔ نیز دیکھیے اقبال کے چند جوہر ریزے، از خواجہ عبد الحمید صفحہ 23۔ کشمیر میں بعض کی تحقیق کے مطابق اقبال کے بزرگ شمالی کشمیر کے علاقہ لولاب یا انت ناگ سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے، لیکن اب جدید تحقیق کے تحت دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے بزرگوں کا تعلق دراصل جنوبی کشمیر کے موزہ ساپر ضلع پلوانہ سے تھا۔ ڈیلی ٹائمز، لاہور، 3 اگست 2003، نمبر 22، کشمیر انگریزی، جلد اول، صفحات 294 تا 338، جلد دوم، صفحات 699 تا 750، 23، ایزن، جلد اول، صفحات 173، 288، 279، جلد دوم، صفحہ 729، 24، دیکھیے احسان اقبال، نمبر جون 1938، صفحہ نمبر 39، باب نمبر 2، خاندان سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ پنجاب کے شمال مشرق میں ایک نہایت قدیم شہر ہے۔ فوق کی تحقیق کے مطابق اسے 5000 سال یا اس سے بھی زائد عرصہ قبل راجہ شیل نے آباد کیا اور شاکل نام رکھا۔ مہابھارت میں لکھا ہے کہ شاکل نگری اپکا ندی کے کنارے مدر ریش میں واقع ہے۔ اس زمانے میں پنجاب کا یہ حصہ مدر دیش کہلاتا تھا، اور سیالکوٹ کے معروف نالہ ایک کو اپکا ندی پکارا جاتا تھا مہاراجہ چندر گپت بکرم جیت کے عہد میں، جسے گزرے تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں۔ راجہ شالبہان نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کرایا۔ قلعہ کو ہندی زبان میں کوٹ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ قلعہ شالکوٹ پکارے جانے لگا اور صدیوں بعد سیالکوٹ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ راجہ شالبہان کے بیٹے پورن کے، جو تارک دنیا اور فقیر ہو کر پورن بھکت کہلایا، کئی قصے پنجابی زبان میں دستیاب ہیں۔ سیالکوٹ کے شمال میں کوئی 4 میل کے فاصلے پر موزہ کرول میں وہ چاہ بھی موجود ہے جس میں پورن کو پھینکا گیا تھا، اور جہاں اکثر ہندو مستورات بخواہش اولاد ہر نئے چاند کی پہلی اتوار کو جا کر نہایا کرتی تھیں۔ سیالکوٹ ابتدائی مسلم سلاطین کے مختلف ادوار سے گزرا، لیکن 14ویں صدی میں سلطان فیروز تغلق کے عہد میں 1351 تا 1388 جب دلی میں بد نظمی اور ابتری کا ظہور ہوا، تو سیالکوٹ کے باج گزار حکمران راجہ سین پال نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی خاطر قلعے کو مضبوط بنانا چاہا۔ اسے نجومیوں اور جوتشیوں نے مشورہ دیا کہ قلعوں کے چاروں گوشوں اور فصیلوں کی بنیادوں پر اگر کسی مسلمان کا خون چھڑکنے کے بعد اس سر نو تعمیر کا کام شروع کیا جائے تو راجہ کے غنیب و غنم اسے سبھی سر نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ راجہ کے آدمیوں نے ایک مسلم نوجوان کو پکڑا اور اسے بے دردی سے ذبح کر کے اس کا خون استعمال میں لایا گیا۔ اس نوجوان کی بوڑھی ماں روتی پیٹتی سیالکوٹ سے باہر نکل گئی، اور اب بیٹے کے ماتم میں شہر بشہر اور در بدر پھرتی ہوئی سید امام علی الحق بن سید حسن قلی کی خدمت میں حاضر ہوئی، جو ان دنوں کوہستان کانگڑا کے نوحہ میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے راجہ سہن پال کے ظلم و ستم کی دردناک کہانی سن کر بڑھیا سے امداد کا وعدہ کیا۔ حسن اتفاق سے چند یوم بعد سلطان فیروز تغلق کا گزر اس طرف سے ہوا، جہاں حضرت امام نے سلطان سے بڑھیا کی المناک داستان اور راجہ کی سنگ دلی کا ذکر کیا۔ سلطان نے ایک لشکر امام صاحب کے سپرد کر دیا تاکہ راجہ کو قرار واقعی سزا دے کر خلق خدا کو اس کے استبداد سے نجات دلائی جائے۔ امام صاحب اپنے مریدوں اور لشکر سمیت امام حسین علیہ السلام کی تلقید میں سیالکوٹ کی جانب روانہ ہوئے اور راجہ کے ساتھ جنگ کی۔ راجہ سہن پال نے قلعے کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہوا تھا کہ بظاہر اس پر فتح پانا مشکل تھا۔ امام صاحب نے نالہ ایک کے جنوب میں پڑاؤ ڈالا۔ 2 دن تک گسمان کی لڑائی جاری رہی، لیکن لشکر نالہ ایک پار نہ کر سکا۔ तीसरे दिन के मार्का में मुसलमान नाला बुर करने में कामयाब हो गया और राजा किले में महसूर हो गया। कई दिन तक मुहासरा कैमरा बिलाकर मुसलमानों को फतह हुई और किला सर हो गया, लेकिन बहुत सी नामवर हस्तियां शहीद हुई। खुद इमाम साहब जख्मी हो गए। जख्म इस कदर शदीद और गहरे थे कि आप जान बल ना हो सके। बहरहाल इस वाकये के बाद सियालकोट में हिंदू राज का खात्मा हो गया। इमाम साहब और इस मार्के के दीगर शुदा के मुतल्लक ये बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि जहाँ कहीं और जिस हालत में भी किसी ने जाम शहादत नोश किया, इसी मकाम और इसी हालत में इसे दफन कर दिया गया। यही वजह है कि पुराने किले सियालकोट के इर्द गिर्द मुतफरक मुकामात पर शुदाए इस्लाम के मज़ार नजर आते हैं। जिस मकाम पर इमाम साहब का रोज़ा मुबारक है, इसके गर्दोनवाह में सैकड़ों मज़ार एक दूसरे के पहलू ब पहलू मौजूद हैं। इमाम साहब के मज़ार पर आज भी हर जुमेरात को मुसलमान कसरत से ज़ियारत के लिए आते हैं और ईदैन के मेलों के अलावा अयाम मुहर्रम में रोज़ा मुबारक पर बहुत से ज़ायरीन जमा होते हैं। मुग़लों के अहद में सियालकोट फलता फूलता रहा। सूफिया और मशाहिर के हुसन अमल और खल्के मुहम्मदी से बेशतर हिंदू मुशरफे बा इस्लाम हुए और मुसलमानों की आबादी में इजाफा होता चला गया। 1807 में महाराजा रणजीत सिंह सियालकोट पर फौज कशी करके इस पर काबज हो गया। लिहाजा बुजुर्गान इकबाल अगर 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में सियालकोट आए तो हों तो इस ज़माने में सियालकोट सिखों के तसल्लत में था। इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक उर्फ शेख रफीका ने जब सियालकोट में सुकूनत अख्तियार करके कश्मीरी लोइयों और धसों की फरोख्त का कारोबार शुरू किया तो पहले इस शहर के मोहल्ला खटिया का एक मकान में फरोकश हुए। गलबन इसी मकान में शेख नूर मोहम्मद वालद इकबाल इनके छोटे भाई शेख गुलाम मोहम्मद पैदा हुए और यहीं इनकी शादियां हुई। 1861 में शेख मोहम्मद रफीक ने मौजूदा जद्दी मकान जो बाद में इकबाल मंजिल के नाम से मसूम हुआ खरीदा और इसमें अकामत पजीर हुए। इस वक्त ये मकान एक मंजिला था और दो कोठरियों दलान रेवड़ी और सहन पर मुश्तमिल था। कोने वाली कोठरी की खिड़कियां गली में खुलती थी और मकान का वो दरवाज़ा महल्ला चूड़ी गरा की जानम था। इन्हीं कोठरियों में से किसी एक में इकबाल पैदा हुए। सफ़ा नंबर 42। 1892 में इस मकान से मुलक्का एक दो मंजिला मकान जो ऊपर नीचे दो कोठरियों बोर्ची खाना और दलान पर मुश्तमिल था शेख नूर मोहम्मद ने खरीदा और 2.5 साल बाद 1895 में दो दुकानें जो पहले मकान की पुश्त पर बाजार चूड़ी गरम इकबाल बाजार की तरफ थी भी खरीद ली गईं। इन तीनों कतात मकान व राजी को मिलाकर मौजूदा मकान तमीर हुआ। बाद में शेख अता मोहम्मद इकबाल के बड़े भाई ने जद्दी मकान से मुलहक एक और दुकान खरीदी और इस सारी इमारत को एक सह मंजिला हवेली की शक्ल देकर इसका नाम इकबाल मंजिल रखा। शेख नूर मोहम्मद ने जद्दी मकान के करीब महल्ला चूड़ी गरा में एक और मकान भी खरीदा जो किराए पर उठा दिया गया। बाद अजां जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में जायदाद की तकसीम की तो जद्दी मकान अपने बड़े बेटे शेख अता मोहम्मद के नाम मुंतकिल हुआ और छोटा मकान इकबाल के हिस्से में आया। ये मकान कुछ अर्सा के लिए राकम के नाम हिब्बा रहा। बाद में इन्होंने इकबाल ने लाहौर जवेद मंजिल की तमीर से बेशतर इसे फरोख्त कर दिया। शेख नूर मोहम्मद नहर वजी सूरत के मालिक थे। सुरख रंग कुशादा पेशानी सतवा नाक रोशन आंखें पतले होंठ और नूरानी चेहरा अच्छे का दावर थे। गलबन जवानी ही से बारिश थे साफ सुथरा लिबास पहनते थे। इन्होंने किसी मकतब में तलीम नहीं पाई थी अलबत्ता हरूफ शनास होने के सबब उर्दू और फारसी की छपी हुई किताबें पढ़ लेते थे। वो असूल के पक्के अल्लाह ज़रफ़ बुरबार मुखालफों और ना हक ऐजा पहुँचाने वालों को माफ़ करने वाले तबीयत के सादा नेक शफीक हलीम और सुलह कम थे। फौक के मुताबिक तजारत पेशा होने के बावजूद सूफिया और उलमा की मजलसों में बैठते और उनकी सोबत में रहने की वजह से शरीयत और इनके तरीकत के निकात व रमूज से पूरी तरह आगाह थे। शुब रोज़ बेदार रहने और नमाज तहज्जुद अदा करने के आदी थे। कलाम अल्लाह की तलावत अक्सर करते थे और इसी को दीन व दुनिया की तरक्की का सबब समझते थे। इनकी यही ताकीद अपनी औलाद को भी थी। चुनचा वो फिक्र की आदत के अलावा तसूफ की पेचीदगियों से भी आशना थे। इसलिए बाद हम असर अकाबर इलम इन्हीं अनपढ़ फलसफी कहते थे। बाद लोग तसूफ की किताबों के मुश्किल मतालब की तशरीह के लिए इनसे रजू करते थे। शेख नूर मोहम्मद अपने वालद के कारोबार में इनका हाथ बटाते रहे। बाद में इसमें इजाफा किया गया और टोपियां या कल्ला सीने लगे। इस सिलसिला में सिलाई की मशीन सियालकोट में सबसे पहले इन्हीं ने मंगवाई थी। दुकान में शागिर्द और मुलाजम भी मौजूद थे। ये टोपियां इस जमाने में बड़ी मकबूल हुई और यूं लोग इन्हीं शेख नत्थू टोपियां वाले कहने लगे। जिंदगी के बेशतर हिस्से में इन्होंने अपने जोरे बाजू से कमाया, लेकिन जूं जूं उम्र बढ़ती गई वो तसव्वुफ की तरफ ज्यादा मायल होते चले गए। बुढ़ापे में इनकी दुकान कुछ अरसा के लिए इनके एक दामाद ने संभाली, मगर बाद में इनके अलग होने पर दुकान बंद हो गई। इन्हें अपने और पराए सब मियाँ जी कहकर बुलाते थे। शेख नूर मोहम्मद की शादी मौजूदा समढ़ियाल जिला सियालकोट के कश्मीरी घराने में हुई। इनकी बीवी वालदा इकबाल का नाम इमाम भी था। शादी के कुछ अरसा बाद शेख नूर मोहम्मद के ससुराल वाले भी सियालकोट ही में आकर आबाद हो गए। इमाम बी को सब बीजी कहते थे। वो लिखना पढ़ना ना जानती थी, इन्हीं सिर्फ नमाज अजबर थी जिसे वो बाकायदगी से पढ़ा करती थी। तमाम ना ख्वांदा होने के बावजूद वो बड़ी समझदार, मामला फहम और मदबर खतून थी। बरादरी और महल्लादारी के झगड़ों का नहायत खुश असलूबी से तस्फिया कराती थी और अपने हुस्ने सलूक के बायस मोहल्ले की औरतों में बड़ी मकबूल थी। घरदारी के सब इंतजाम खुद करती, अक्सर मस्तूरात अपने जेवर या नकदी इनके पास बतौर अमानत रखवाती, जिन्हें वो अलहदा अलहदा सुर्ख कपड़े की पोटलियों में बांध कर एहतियात से रखती। इनकी सबसे नुमाया खसूसियत गुरबा परवरी थी। कई हाजतमंद खवातीन को खुफिया तौर पर नकदी देती थी। इनके बड़े बेटे शेख अता मोहम्मद ऐसी अमदाद को मजाक में गुप्पत दान कहा करते थे, और जब रुख्सत पर घर आते तो इन्हीं गुप्पत दान के लिए अलहदा रकम दिया करते थे। अमदाद करने का एक और तरीका इनका ये था कि मोहल्ले के गरीब घरानों की 10-12 साल की 3-4 बच्चियां अपने यहाँ ले आती और इनकी कफालत करती। बच्चियां घर के कामकाज में हाथ बटाती और बीजी की बहू बेटियों से कुरान मजीद, नमाज, जरूरी दीनी तलीम, उर्दू लिखना पढ़ना, खाना पकाना और सीना परोना सीखती। कुछ मुद्दत बाद मुनासिब रिश्ता तलाश करके इनका ब्याह कर देती। जितना अरसा वो इनकी तहवील में रहती इनकी देखभाल ऐसे ही करती जैसे अपनी बेटियों की, और शादी के वक्त भी इन्हीं बेटियों ही की तरह रुखसत करती। शादी के बाद वो लड़कियां इनके यहाँ इसी तरह आती जिस तरह बेटियां मेके आती हैं। इनके जज्बा इशार का एक वाक्य शेख इजाज अहमद के बयान के मुताबिक यह है कि मियाँ जी के छोटे भाई शेख गुलाम मोहम्मद के यहाँ लड़कियां ही होती थी। इनकी बीवी को बेटे की ख्वाहिश थी। दोनों भाई इकट्ठे रहते थे। एक बार दोनों की बीवियां उम्मीद से हुई। इसी मरतबा बीजी को अल्लाह ने लड़का दिया और देवर की बीवी के यहाँ फिर लड़की हुई। इनके अफसोसगी को महसूस करते हुए बीजी ने इनसे कहा कि तुम लड़का तुम ले लो और लड़की मुझे दे दो। चुनचा बच्चों का तबादला हो गया। बीजी ने लड़की को पालना शुरू कर दिया और इनकी देवरानी ने लड़के को। चंद माह बाद एक दिन सुबह के वक्त दोनों काम काज में मसरूफ थी। बीजी ने लड़के के मुतलक पूछा तो इनकी देवरानी ने कहा कि अभी दूध पीकर सो गया है। जब खासी देर होगी और बच्चा बेदार ना हुआ तो जाकर देखने पर मालूम हुआ कि मर चुका है। इसके होंठों पर दूध लगा हुआ था। इसके बाद बीजी ने लड़की देवरानी को लुटा दी। शेख इजाज अहमद बयान करते हैं कि इस फौत हो जाने वाले लड़के की पैदाइश का अंदराज रजिस्ट्रार म्यूनसिपल कमेटी में मौजूद नहीं। म्यूनसिपल कमेटी के रजिस्टर के जिस अंदराज को गलती से इकबाल या इस लड़के की पैदाइश का अंदराज 1873 लिया गया है, दरअसल मोहल्ला कश्मीरिया के किसी नत्थू कश्मीरी के यहाँ लड़के की पैदाइश का अंदराज है। इमाम बीबी की वफात 1914 में हुई और इन्हें इमाम साहब के कब्रस्तान में दफन किया गया। इकबाल के वालद शेख नूर मोहम्मद इनके पहलू में दफन है। शेख नूर मोहम्मद की औलाद की तादाद 7 थी। सबसे बड़े बेटे शेख अता मोहम्मद 1859 में पैदा हुए और इस वक्त मियाँ जी की उम्र 23 बरस थी। इसके बाद दो बेटियां फातिमा भी और तला भी पैदा हुईं। इस दौरान एक लड़का भी हुआ जो चंद माह बाद फौत हो गया। इकबाल की पैदाइश के वक्त मियाँ जी की उम्र तकरीबन 40 बरस थी। इसके बाद दो बेटियां करीम भी और जैनब भी पैदा हुई। जो जो औलाद बढ़ती गई मियाँ जी जरूरत के मुताबिक जद्दी मकान को कुशादा करते चले गए। इकबाल के भाई शेख अता मोहम्मद ने जो इनसे उम्र में तकरीबन 18 बरस बड़े थे इब्तदाई तलीम सियालकोट में हासिल की। आपकी दो शादियां हुई। पहली बीवी कश्मीरी रठोरों की खानदान से थी जिसको तलाक हो गई। दूसरी बीवी का नाम महताब भी था मगर इन्हीं सब भाभी जी कहते थे। शेख अता मोहम्मद के पहले ससुराल वाले फौजी वजीफा खोर थे। इनके फौज से तल्लक और शेख अता मोहम्मद अपने तवील कद और मजबूत जिस्म के सबब रसाले में भर्ती हो गया। कुछ अरसे बाद इन्हीं थॉमसन इंजीनियरिंग स्कूल रड़की में तलीम पाने के लिए भेजा गया, जहां से इम्तिहान पास करके वो फौज के शोबे बारक मास्टरी में तैनात हुए। सारी उम्र سرکاری ملازمت کی اقبال کو علمی لحاظ سے پروان چڑھانے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجنے میں انہوں نے بڑی مدد کی۔ اقبال ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے مداح تھے، ان کا بے حد ادب کرتے تھے، کبھی ان کے سامنے اونچا نہ بولتے۔ وہ پینشن کے بعد کافی عرصے تک حیات رہے۔ انہوں نے 1940 میں 81-82 سال کی عمر میں سیالکوٹ میں وفات پائی اور اپنے والدین سے چند قدم کے فاصلے پر امام صاحب کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ جس زمانے میں اقبال کے اجداد نے کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں سکونت اختیار کی، اس وقت برصغیر کے مسلمان اپنی تاریخ کے ایک نہایت ہی نازک دور سے گزر رہے تھے۔ 1799 میسور میں سلطان ٹیپو کی انگریزوں کے مقابلے میں شکست نے مسلمان ہند کی اپنی زوال پذیر اجتماعی سیاسی قوت کے احیاء اور بحالی کے لیے تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس دور کے فقہا نے مسلمانوں کے غور کے لیے کئی سوال اٹھائے تھے، مثلا ہندوستان دارالاسلام سمجھا جائے یا دارالحرب، اسلامی فقہ میں جہاد اور ہجرت سے کیا مراد ہے اور کن صورتوں میں مسلمانوں پر جہاد یا ہجرت واجب ہے۔ قرآن مجید کی آیت آتیو اولی امر منکم کے معنی کیا ہیں؟ کیا خلافت سے تعلق رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے؟ ہندوستان اور دیگر ممالک کے مسلمان جو عثمانی سلطنت کا حصہ نہیں، عثمانی خلافت سے کیوں کر منسلک تصور کیے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال بڑی اہمیت کے حامل تھے۔